बात इसका नियम नहीं है। द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन का तो नियम है कि वो दो ही बार होगा, उपशम सम्यक दर्शन करके श्रेणी चढ़ेगा तो दो ही बार श्रेणी चढ़ सकता है उपशम करके चार मोहनी। लेकिन दर्शन मोहनी के उपशम की प्रक्रिया तो एक बार उसने तीन करण करके उपशम कर लिया है तो उसके बाद फिर एक निश्चित काल तो है कि उस काल के बाद ही उसको उपशम सम्यक दर्शन होगा। लेकिन उस वीक में उसे उपशम सम्यक दर्शन हो जाता है, छूट जाता है, फिर हो जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा की अनुभूति होती है, तो उस आत्मा की अनुभूति का अर्थ क्या है? अब फिर पूछते हैं टुकड़बंदी, उसमें कहते हैं कि यहाँ हमारा अनुभूति का क्या आशय है, तो फिर वो उसमें बताते हैं कि अनुभूति से अर्थ हमारा ये है कि उसे शुद्ध आत्मा की श्रद्धा होगी, ये उसकी अनुभूति का अनुभूति संचेत है। ऐसा भी दिया जहाँ पर संचेत ना हो अर्थात ज्ञान हो जाए इस बात का कि मेरी आत्मा शुद्ध है, तो इस बात की अज्ञान या श्रद्धान श्रद्धान होना, जानने लगना, जानने को कहीं कहीं अनुभूति भी कहा, संचेत यति जानाती। वो तो छठे सातवें वो स्थान में निश्चय चारित्र के साथ होता है। हाँ, ये सम्यक का चरण चारित्र होता है चौथे वो स्थान। स्वरूप आचरण स्वरूप आचरण, जब स्वरूप में आचरण होता है राग द्वेष से रहित दशा होती है और उसे स्वरूप आचरण कहते हैं। ये अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सारजी में स्पष्ट किए स्वरूप चरणम स्वरूप आचरण, ये तो इसके व्याख्या नंबर ये चारित्रम खलु दम्भो सातवें नंबर की गाथा जो उसकी है उसमें लिखा स्वरूप चरणम चारित्रम स्व समय प्रवृत्ति इति अर्थ तदेव वस्तु स्वभावात् धर्म शुद्ध चैतन्य प्रकाशम इति अर्थ तदेव चा यथा अवस्थित आत्मगुणत्वात् साम्यम साम्यम तु दर्शन चारित्र मोह उदयापादित समस्त मोह शोभ अभावात् अत्यंत निर्विकारो जीवस्य परिणामः। अब मोह शोभ से रहित जो जीव के अत्यंत विशुद्ध परिणाम है वो दशा जो है साम्य है और उसी का नाम स्वरूप में आचरण है। तो ये तो बहुत ऊंची दशा की बात हो गई, दसवें से नीचे बातें नहीं कर रहे, सातवें वाले तक को नहीं कह रहा है, इसमें इतनी ऊंची बात है। वो कह रहे कि स्वरूप में तो आचरण जब हो सकता जब मुंह का क्षय कर दे, मुंह का क्षय तो करता है स्थान, तो कम से कम सूक्ष्म कषाय रह गई है उस अवस्था में ही अत्यंत निर्विकार दशा जब बनती है दर्शन चारित्र मुंह कर्म समस्त मुंह का नाश हो गया। तब अनुभूति का अर्थ क्या है? सवाल ये है तब भी उसके लिए आत्मा की अनुभूति कैसी होगी? जैसी है वैसी होगी। शुद्ध आत्मानुभूति और आत्मानुभूति में फर्क है। आत्मानुभूति का अर्थ है कि मैं शरीर से जुदा हूँ इस बात की जानकारी हो जाना अनुभूति है। तो इस बात की उसे जानकारी होगी, अब उसको प्राप्त करने के लिए उपाय कर रहा है तो उसने तो संयम ले लिया, फिर सकल संयम ले लिया। लेकिन जब अप्रमत्त दशा को प्राप्त होगा तब जाकर के कहते हैं जब राग द्वेष बुद्धि पूर्वक छोड़ देगा समस्त राग द्वेष तब निरुपराधा शुद्धोपयोग, तब उस निरुपराध की शुद्धोपयोग की दशा में उसे आत्मा का साक्षात जो अनुभव है वो होगा। वो भी अशुद्ध दशा है तो अशुद्ध अनुभव होगा, शुद्ध अनुभव इतना ही होगा कि मेरी जैसी आत्मा है वो प्रकट है और ये शरीर है सुप्रकट है, इतना मोटा मोटा है उसे जानाती इति वाह जानता है यही अनुभव उसको कहेंगे। दूसरे के अनुभव को भी तो अनुभव कहते हैं। सातवें में जब पहुंचेंगे तब शुद्ध उपयोग होगा और छठे में तो शुद्ध उपयोग होता है शुभ उपयोग। तो सारी प्रवृत्ति जितनी भी है वो शुभ उपयोग की है और निवृत्ति जो है वो शुद्ध। तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों चलती है कि प्रवृत्ति तो हुई बोलने की लेकिन निवृत्ति क्या है? मुझे पाप वचन से निवृत्त होना है, मुझे आगम के विरुद्ध नहीं कहना, ये निवृत्ति हो गई। तो सातवां हो गया, जैसे ही बोलने की प्रवृत्ति हुई तो छठा स्थान है। फिर बोलना तो है लेकिन कैसे बोलूंगा? भाषा समिति पूर्वक बोलूंगा तो जैसे ही भाषा समिति आई वैसे ही निवृत्ति हो गई, वैसे ही ये इस तरह प्रमत्त अप्रमत्त जो है हजारों दफे पूरे जीवन झूले की तरह हजारों दफे प्रमत्त अप्रमत्त होता ही है। प्रथम संदेह अनुगमपा इत्यादि लक्षण ऐसा लिखा ये कहीं नहीं लिखा, ये कथन में लिखा कि प्रशम संदेह अनुकंपा और आस्तिक होवे और सम्यक दर्शन नहीं हो।
ये कहीं नहीं,
अगर सम्यक दर्शन है तो ये अवश्य होंगे,
सम्यक दर्शन होने पर ये अवश्य होंगे, बस इनके होने पर सम्यक दर्शन
हो, ये कहीं नहीं लिखा। लेकिन इनके होने पर सम्यक दर्शन ना हो ऐसा भी नहीं लिखा कहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन की परिभाषा ये लिखी है, व्यवहार सम्यक दर्शन आत्मविशुद्धि मात्रम, दोनों एक साथ रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मोक्षनाथ प्रकाशक गौर से पढ़िए, उसमें लिखा कि जहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन है वहाँ निश्चय सम्यक दर्शन भी है, दोनों एक साथ रहते हैं। जिस समय हम सत्य देवगुरु शास्त्र को अलग अलग मान करके उन्हें प्रणाम करते हैं तो वो व्यवहार सम्यक दर्शन, जब सत्य देवगुरु शास्त्र को माध्यम बना के हम अपने आत्मा की तरफ ध्यान देते हैं वही जन्म निश्चय सम्यक दर्शन, दोनों उसी साथ है, तो वो बारीक चर्चा हो जाएगी। नहीं पता हूँ कि वो बारीक चर्चा है एकदम, उसको नहीं हर आदमी जो है नहीं समझ पाता, क्योंकि प्ररूपण करना तो कैसा भी प्ररूपण किया जा सकता है, प्ररूपण के तो ढंग बहुत हैं, हम चाहें तो 10 मिनट में उसी चीज का दूसरे ढंग से प्ररूपण करते हैं, तो प्ररूपण है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, तो वस्तु स्थिति तो व्यक्ति जब दोनों चीजों को अलग अलग पद्धतियों से समझेगा तो उसे मालूम पड़ेगा कि हाँ ये वस्तु स्थिति है। कैसे परिणाम होना
चाहिए,
इससे ज्यादा क्या करेंगे, चरणानि योग की पद्धति में तो इतना ही लिखा है कि सत्य देव गुरु शास्त्र यही उनका सच्चा स्वरूप है, इसके सिवाय कोई देव नहीं है, इसके सिवाय कोई गुरु नहीं है, इसके सिवाय कोई शास्त्र नहीं, इतना ही है। अब भीतर में जो है अग्रहित मिथ्या, ग्रहित मिथ्या से तो बच गए, ग्रहित मिथ्या से तो बच गए सम्यक दर्शन की भूमिका। अब अग्रहित मिथ्यात्म में 7 तत्व जो भगवान ने कहे हैं तो जैसे कहे वैसे ही हैं, इस प्रकार का श्रद्धा होना, और कहते कि अकेले श्रद्धा नहीं भाव वासना होती है, अब भाव वासना कैसी होती तो पढ़ो फिर, भाव वासना, भाव वासना मतलब कि जिसको अपन कहते ना कि जरा घड़ा तो उठा लाना, तो घड़ा अभी उठाया नहीं है लेकिन कैसा होता है, ऐसा है हमारे घर में तो ऐसा घड़ा है जहाँ पर रखा रहता है, वो भाव है। अकेले शब्द कहने से और उसे उस घड़े को जैसा है वैसा आकार ध्यान में आ गया और फर्म उठा कर भी गया, तो ये कहलाता है कि उस शब्द को सुन करके जीव कहा तो जानना देखना जिसका स्वभाव है और ऐसा है वह, तो फौरन जो है शुद्ध जीव सत्य का ख्याल आ गया। अलग अलग होगा कि घी अलग है और घड़ा अलग है, पाप से बचना है मुझे इसलिए उपाय कर रहा हूँ, पहली बार ताकि मेरी कषाय मंद हो, विशुद्धि परिणाम हो गए, ताकि जब विशुद्धि परिणाम होगा तब जा करके मैं तत्व का चिंतन करूंगा। तो पहले तो कषायों को मंद करता है, 5 पापों का त्याग करता हूँ, 1 घंटे के लिए संकल्पित होता हूँ, पहले संकल्पित होगा कि मैं 1 घंटे तक 5 पापों की तरफ मन वचन का तीनों को नहीं जाने दूंगा, ये मैं संकल्प लेता हूँ, चारों दिशाओं में भगवान को प्रणाम करके फिर बैठता हूँ, फिर उसके बाद जैसा उसका मन करता है वैसा चिंतन करता है, उस बीच में अपने मन को लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के चिंतन अपना लेता हूँ, जैसा उसके मन लगेगा जिसमें मन लगेगा, पर ऐसा ना हो कि 5 पापों से विरक्त हुए बिना वो बैठ गए तो वो समझने के 1 घंटे के लिए संकल्प तो लेना पड़ेगा कि 5 पापों का, कोई व्यक्ति घंटों तत्व चिंतन करता है लेकिन अगर वो संकल्पित ना हो पापों के त्याग से तो उसका वो तत्व चिंतन कोई माने नहीं, इसलिए सामायिक करने वाले को इतनी देर के लिए सब विकल्पों से मुक्त करके नियम लेकर के, तब तो वो चेलो श्रेष्ठ मुनि रहे, इसलिए उसको कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी मुनि महाराज जी के ऊपर कपड़ा डाल दी हो, इतना निष्प्रयी हो गया श्रावक को करके, कोई बात नहीं लेकिन हमने संकल्प तो लिया है इसलिए हम उठेंगे नहीं, शरीर तो रुक गया है, वाणी रुक गई है, रहा मन का तो मन घूमता रहता है, पर हम अशुभ से बचा करके पुनः सुख में ले आएंगे उसके लिए, इसी के लिए तो फिर मन के लगाने के लिए तो विभिन्न प्रकार के उपयोग लगाएंगे, 5 परमेष्ठी का चिंतन करो, देवता आता है उठता करो, फिर 5 परमेष्ठी में से मैं किस परमेष्ठी के निकट हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है, मैं सिद्ध के समान हूँ, मैं अनंत अवस्था में भी मैं प्राप्त कर सकता हूँ, मैं इस तरह से जो है अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय के स्वरूप का विशेष रूप से चिंतन करके उसमें से फिर अपने आत्मा की तरफ जाना कि मुझे यही प्राप्तव्य है, मुझे इन 5 परम पदों को प्राप्त
करना है।
ध्यान के समय
विचार
ठीक है, ध्यान के समय विचार नहीं होता, होता ही नहीं है, ध्यान से पहले विचार होता है। तो जब विचार कोई बहुत सारे पहले कहते हैं कि बिना किसी विचार के भी ध्यान नहीं सकता, इसलिए अविचार से विचारवान हो, विचार करो क्या सही है क्या गलत है, बिन जाने से दोष गुणन को, तो पहले गुण और दोष जानो, अपने आत्मा का स्वभाव जानो, पर पदार्थ का स्वभाव जानो, इसका चिंतन करो। चिंतन करते करते किसी एक विचार पर रुक जाओ, उसका नाम ध्यान है। तो वो रुकना कितनी देर होगा, एक क्षण के लिए होगा, फिर पुनः विचार करने लगे। एक कोई विचार आया तो उसमें एक क्षण के लिए रुके, फिर विचार। तो कहते निरंतर जो है विचार करो और उसमें किसी विचार पर स्थिर हो, तो जितनी देर स्थिर रहे वो तो कहलाया ध्यान, और जितनी देर आप नीचे आए तो चिंतन करो। तो चिंतन एक तरह से ध्यान के लिए, ध्यान के पूर्व की अवस्था है, आवश्यक है। समुद्घात जो है अपन को आज थोड़ा सा पढ़ लेना है, उनके बारे में मैंने, ये तो एक अलग विषय तो नहीं है पर फिर भी एक तरह से अलग ही टर्म है समुद्घात। और कोई प्रश्न उत्तर तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे, है ना, कोई विषय बारे में पढ़ना, फिर क्वेश्चन आते हैं। जब अपने मूल शरीर को नहीं छोड़ते हुए आत्मा के प्रदेश किसी निमित्त वश बाहर निकलते हैं तब उसे समुद्घात कहते हैं। कई कंडीशन ऐसी बनती हैं जबकि अपने आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, हमें उस चीज का एहसास नहीं होता, पर कोई बाहर देखने वाला गौर से देखे तो उसे उस चीज का एहसास हो जाएगा। जैसे कि हम कषाय करते हैं और बहुत अधिक क्रोध होता है, तो कई बार क्रोध में हाथ पैर फड़फड़ाने लगते हैं और जो आसपास हो वो भी क्षुब्ध हो जाता है। ये क्या चीज है? इसका मतलब है कि एक निश्चित दूरी तक मेरे आत्मा के प्रदेश उस क्रोध की अवस्था में बाहर गए हैं और दूसरे को उसने प्रभावित किया। जब बहुत भारी वेदना होती है तो वेदना के समय पर भी आत्मा के प्रदेश कहते हैं कि बाहर निकलते हैं और एक निश्चित क्षेत्र तक फैलते हैं, उस क्षेत्र में जो भी आता है वो भी दुखी हो जाता है, वो भी रोने। तो इस तरह से कषाय समुद्घात, वेदना होने पर उत्पन्न होने वाला वेदना।
आपने ये बता दीजिए,
वेदना समुद्घात में वेदना के प्रतिकार के लिए जो उपाय है उन सब उपायों को खोजता है, वहां तक चला जाता है उसको दूर करने के लिए, ऐसा भी आता है। पर सामान्य रूप से अपन क्या समझेंगे कि कषाय की स्थिति में जो हमारे आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, बहुत अधिक कषाय, तीव्र कषाय, उसे कषाय समुद्घात कहते हैं। जब वेदना की तीव्रता में आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं तो उसे वेदना समुद्घात कहते हैं। फिर एक होता है जब हम नाना प्रकार के रूप बनाने की क्षमता कोई प्राप्त कर लेता है, तब वो विभिन्न प्रकार के रूप बनाने के लिए जब अपने आत्मा के प्रदेशों को बाहर भेजता है उसे कहते हैं वैक्रियक्षण, विक्रिया करना, मतलब बहुत प्रकार के विभिन्न रूप धारण करना, क्षमता जिस व्यक्ति के भीतर होती है उसे वैक्रिक समुद्घात हो जाता है। बहुत तपस्वी है, तपस्या करते करते जो है उसे अगर तपस्या के समय क्रोध आ जावे तो उसकी पूरी की पूरी जो एनर्जी कंज्यूम हुई थी वो एक निश्चित डायरेक्शन में बाहर निकल के प्रोजेक्ट होकर के और पूरे एरिया में 12 योजन तक के उसको जला के नष्ट कर देगी, इसको तैयस समुद्घात। या फिर ऐसी स्थिति बनेगी ये अशुभ तैयस है, और जब बहुत अधिक करुणावान हो जाए वही और बाहर जीवों की बहुत वेदना देख करके उसके अंदर अनुकंपा आ जाए तो वही जो तैयस समुद्घात हुआ था अभी अशुभ हुआ था वही शुभ हो जाता है, वो 12 योजन के पूरे एरिया में सुविक्ष हो जाएगा, आग लग गई हो तो ना सब समाप्त शांत हो जाएगा। तो दोनों तरह से ये तैयस समुद्घात कहलाता है। जब कोई महामुनि उनके लिए किसी बात के में शंका हो जाती है, कोई तत्व की बात समझ में नहीं आती है तो बड़ा संक्लेश भीतर होता है, संक्लेश होता है कि आज कोई केवली भगवान होते तो मुझे अपनी बात का समाधान कर देते, कोई तो नहीं है यहाँ पर, ऐसा विचार आते ही और उनकी तपस्या के बल से जो है आहारक शरीर निकलता है, आहारक एक पुत्रा निकलता है, वो जाकर के जहाँ केवली है वहां जाकर उनको स्पर्श करके वापस लौट आता है और उनकी संख्या का समाधान होता है। इसको बोलते हैं आहारक समुद्घात। मरण से पहले जीव को इस बात का भय होता है कि कहाँ जाकर के उत्पन्न होगा, तब फिर जो है मरण से कुछ समय पहले अंतर में पहले वो जीव जहाँ उसे उत्पन्न होना है उस स्थान को छू करके वापस आ जाता है उसके आत्मा के प्रदेश, इसे कहते हैं मरणांतिक समुद्घात। और जब केवल ज्ञान होने पर केवली भगवान जब चार कर्म शेष रह जाते हैं और तीन कर्म जो आयु गोत्र नाम परंपराए ये तीन कर्म आयु कर्म से अधिक स्थिति वाले रहते हैं। आयु तो जल्दी समाप्त होने वाली और तीन कर्मों की स्थिति ज्यादा है तो भोगेगा कौन, आयु नहीं रहेगी तो कैसे भोगेगी। तो कहते हैं उन तीन कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर बनाने के लिए जो केवल भगवान समुद्घात करते हैं आत्मा के प्रदेश उनके फैलते हैं, पहले वर्टिकल होते हैं फिर हॉरिजॉन्टली होते हैं फिर थ्री डायमेंशनल हो जाते हैं फिर पूरे लोक को घेर लेते हैं फिर समेटते हैं। तो कहते ठीक ऐसे जैसे कि कपड़ा निचोड़ करके रख दो तो घंटे भर में सूखे, कपड़ा निचोड़ के ऐसे रख दो तो घंटे भर में सूखेगा, और अगर आपने उसको ऐसा फैला दिया और जरा झटकार दिया पूरा का पूरा फिर डाल दिया तो कहते पहले दंडाकार हो जाते हैं फिर ऐसे खुल जाते हैं आत्मा के प्रदेश फिर ऐसे इस तरह इस डायरेक्शन में फैल जाते हैं फिर पूरे लोक में फैल जाते हैं, ये फिर ऐसे क्रम क्रम से कम होकर आपके प्रदेश ज्यों के त्यों आत्मा में समा जाते हैं। ये प्रक्रिया इस प्रोसीजर में पूरे जो आपके तीन कर्म हैं वो कर्म आयु कर्म के बराबर हो जाते हैं। तो केवी तो ऐसे जो है सात प्रकार का समुद्धार मैंने सात ऐसी कंडीशन है जिनमें की आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं मूल शरीर को छोड़े बिना, लिंक बनी रहती है, चिपकली की पूंछ कट जाती है तो बहुत दूर तक तड़पती रहती है। क्या है ये, अभी आत्मा के प्रदेश उसके वेदना की वजह से जो है अभी उसमें स्पंदन हो रहा है, जब सिमट जाएंगे पूरे वापस तो शांत हो जाती है। ठीक इसी तरह से अब वेदना और कषाय तो दिखाई पड़ती है, दूसरा व्यक्ति इफेक्टेड बिना उसके हो नहीं सकता, आपके प्रदेश निकले होंगे इसलिए उसको भी संक्लेश हो जाता है, किसी बहुत वेदना से व्यक्ति को देख करके स्वयं की वेदना हो जाए या कषायवान व्यक्ति के निकट पहुंचो तो स्वयं की कषाय क्या करें। ये इस तरह से सात समुद्रात है, देखना बहुत लंबा चढ़ा है देखने के लिए, देखना सामान्य रूप से तो आप पढ़ सकते हैं क्योंकि सब और डिटेल में बहुत डिटेल है इनके सबके बुद्धि है, यही परिभाषा दी है वो जो आप कह रहे थे ना, बहुत तीव्र रोग होने पर या विषपान कर लेने पर विशेष रूप से जब वेदना होती है उस वेदना में ये निकलते हैं आत्मा के प्रदेश बाहर, उसी को वेदना समझाती है परिभाषा बनेगी उसकी।
और अपने वेदना में ही निकलते वैसे
तीव्र वेदना में सामान्य रूप से तो बहुत क्या वेदना में शुभ अशुभ नहीं होता, सिर्फ तेजस में होता शुभ अशुभ समुद्घात नहीं। देखो वेदना में समुद्घात हो रहा है तो संक्लेश है कि नहीं, कषाय में हो रहा है तो संक्लेश है कि नहीं, यहाँ तो कोई बात ही नहीं। आज जब हर शरीर बना है तब भी संक्लेश है उसके बिना बना नहीं, तेजस है तो तेजस भर में दो स्थितियां हैं कि जब जब बहुत अधिक बचाने का संक्लेश हुआ है सबको बचा लेते ऐसा मन हुआ है तब भी तब वो शुभ कहलाता है, जब ये सब का नाश कर दूं ये मेरे विरुद्ध में है जैसे कि डिवाइन मिली अशुभ तेजस होती संक्लेश की दशा में ही है। बस इतना जरूर है कि वेदना तो वेदना और कषाय समुद्घात तो सभी के लिए होते हैं, वैकृत समुद्घात भी सभी के लिए होता है, तेजस समुद्घात और आहारक समुद्घात ये तो महामुनि के ही होता है, सामान्य मुनि के भी नहीं। तो केवली समुद्घात तो केवली भगवान के ही होता है और मारणांतिक समुद्घात प्राणी सभी के लिए हो सकता है, उसमें कोई एक शब्द और है जो आप कह रहे थे मारना, मारना का अर्थ होता है गवेषणा खोजना, जिन निमित्तों के द्वारा या जिन कारणों के द्वारा हम जीव की खोज करते हैं कहां कहां मिलेंगे जीव तो उसे कहते हैं मारना। अब ये जो है मारना 14 प्रकार की होती है, मारना का अर्थ है गवेषणा या खोजना, जिसमें या जिसके द्वारा जीव खोजे जाते हैं उसे मारना कहते हैं। अब इसमें गति मार्ग फिर इंद्रिय मार्ग योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन देशा अब सम्यक संगी और आहार, इस तरह से जो है 14 मार्ग है। अब जीव को खोजना है मान लीजिएगा तो क्या करेंगे, कौन सी गति का जीव है भाई खोजेंगे, चार गतियां हैं कौन सी गति का जीव है, मनुष्य है कि तिरंग है कि देव है कि नारद जी, नहीं मैं खोजेंगे और कहां खोजेंगे तो चार गतियों में खोज लिया। कहते ये तो ठीक है गति में तो खोज लिया पर इंद्री तो देखो कितनी है उसकी, कौन सी इंद्री वाला है, कहते एक इंद्री वाला है दो इंद्री वाला पांच इंद्री तक हो सकती है इसमें खोजो तो इंद्री की अपेक्षा से खोजेंगे। फिर कहते हैं कि शरीर कौन कौन से हैं तो सात प्रकार के शरीर हैं, तो वैदिक शरीर वाला है कि आहारक शरीर वाला है कि औदारिक शरीर वाला है, तैजस्टारमण शरीर है, या कि उनकी मिश्र दशा है, ना शरीर से कौन सा शरीर है उसमें खोजो। तो काय के माध्यम से भी हम खोज सकते हैं। फिर कहते योग के माध्यम से, मन वचन काय कौन सा योग उसके लिए है। अगर एक इंद्रिय है तो अकेला काय योग है, उसके लिए वचन भी नहीं आया है न मन आया है। दो इंद्रिय है तो फिर उसके वचन योग आ गया है, लेकिन मनो योग नहीं है। पंचेंद्रिय है तो उसके लिए वो संगी है। पांचों योग वचन योग भी है, मन योग भी है, काय योग भी। ऐसे योग के माध्यम से खोज लेते हैं जीवों को। फिर कहते वेद के माध्यम से, तो कहते स्त्री वेद है, पुंसक वेद है, पुरुष वेद है, कौन सा वेद वाला है, ऐसे खोज लो। इस तरह से भी खोजा जा सकता जीव। फिर कहते कषाय, तो कौन सी कषाय में है। अब कषाय चार प्रकार की है और उनके विभिन्न वेद है, 16 वेद है, तो उन सब में खोजो कि कौन सी कषाय वाला है। क्रोध कषाई है कि मान कषाई है कि माया कषाई, इस तरह से जो है घटाएंगे कि किस जीव में कितनी कषाएं पाई जाएंगी, किस गति में कौन सी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब अपन इन सबको एक दूसरे से लिंक करेंगे। अभी तो अलग अलग कर रहे हैं, अब पहले गति लगाई और फिर उस गति में भी जो है मान लो देव गति लगाई। अब देव गति में भी कौन सा, तो कहते संगी पंचेंद्री इंद्री की अपेक्षा। काय कौन सी है, तो कहते व्यक्तिगत काय है। योग कौन सा है, तो कहते मन वचन काय, तीनों योग हो जाएंगे। इस तरह से एक ले लिया और बाकी का उसमें खोजना शुरू कर दिया। फिर ज्ञान, तो ज्ञान कितने होंगे, एक इंद्री है तो मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान होंगे, और दो इंद्री तीन इंद्री चौर इंद्री तक और असंगी जीव तक दो ही ज्ञान रहेंगे। और अगर संगी पंचेंद्री है तो कहते पांचों प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं उसके। लेकिन एक जीव के कितने होंगे, तो चार हो सकते हैं, और अगर वो एक होगा तो केवल ज्ञान होगा। इस तरह से जो है ज्ञान लगा लिए, इसी तरह दर्शन लगा लिए, चक्षु अचक्षु अधि और केवल दर्शन, ये चार दर्शन है, इसकी अपेक्षा से खोजो। फिर लेशिया लगा ली, छह लेशियाएं कहाँ तक पाई जाएंगी, सम्यक दृष्टि है तो वहीं तक छह लेशियाएं होंगी। फिर उसके बाद में अगर प्रति हो जावे तो उसकी अशुभ लेशियां नहीं होंगी, तो शुभ लेशियां नहीं। इस तरह से जो है लेशियां लगा लेंगे। भव्य है क्या भव्य है, ये भी एक गवेषणा है। भव्य जीव को एक कोटि में डाल देंगे, अभव्य को एक में डाल देंगे। सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, अब सम्यक दृष्टि भी है तो कौन सा है, उपसम सम्यक दृष्टि है, चाहे सम्यक दृष्टि है, चाहे उपसम सम्यक दृष्टि है, कितना भेद प्रभेद उसमें भी बन जाएगा। इसी तरह से आहारक है क्या अनाहारक है, विग्रह गति में जा रहा होगा तो अनाहारक है, और अगर जन्म दे लिया होगा तो आहारक है। इस तरह से जो है कुछ कर लिया, ये गवेषणा कहलाती है। इसको जो है चौदह मार्जना है, जीवों को इस तरह से हम खोजते हैं। एक्चुअली मार्जना जो है और गुण स्थान, ये सब इनको इनमें अपना मन लगाने के लिए बैठे हैं खाली। अब देखें कौन सा चौथा गुण स्थान है, तो चौथे गुण स्थान में और कितनी कितनी मात्राएं लगेंगी। चलो चौथा गुण स्थान किस किस का होता, चारों गति के जीव के चौथा गुण स्थान होगा। चलो चारों गति वाले इंद्री की अपेक्षा, तो चौथा गुण स्थान तो जो है संगी पंचेंद्री को ही होगा। एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री को तो दर्शन होता नहीं। इस तरह से बैठे बैठे जो है और उसमें गुणा भाग लगाते रहो, विचार करते रहो, तो मन एकाग्र हो जाता है। इसलिए जो है ये मार्गना और गुण स्थान दोनों गवेषणा के लिए और जीवों के परिणामों को समझने के लिए, अपने स्वयं के परिणाम की समझने के लिए। समुद्घात की डेफिनेशन लिख लो। सम प्लस उद्घात निकलना, उद्घात का निकलना। भली प्रकार से जब आत्मा के प्रदेश किसी निमित्तवश शरीर से, मूल शरीर से बाहर निकलते हैं, तो उसे समुद्घात। या शॉर्ट में लिखेंगे आत्म प्रदेश का, शॉर्ट में लिख लो, पूरी परिभाषा वैसे मत लिखो, ऐसा लिख लो। किसी कारणवश आत्मा से कुछ प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, यही समझ। किसी कारणवश आत्मा के कुछ प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, प्रोजेक्शन है। सात प्रकार के होते हैं, वेदना, कषाय, व्यक्तियक, वेदना, कषाय, व्यक्तियक, मारणांतिक, मरण के अंत में होने वाला मारणांतिक, तैजस, आहार, केवल। ये वेदना, कषाय, व्यक्तियक, मारणांतिक, तैजस, आहार, केवल, ऐसे जो है। आप समझ जाते हैं कि परिभाषाएं तो याद रखें सामान्य रूप से, परिभाषा लंबी चौड़ी
नहीं, आपने जैसे समझा
ना वैसे लिख लीजिए, लिखवा दें, लिख लो, आप श्रम करो, आप लिख करके लाना पड़ते हैं देखिए, क्योंकि वेदना की और कषाय की तो सामान्य रूप से बन जाएगी, विक्रिया की बन जाएगी, लेकिन थोड़ा सा तैजस आहारक और मारणंती की भी इजी है, मरण के अंत में होने वाली, बस अपन को लिखना पड़ेगी, तो तैजस की लिखना पड़ेगी, आहारक की और विषभक्षण इत्यादि होने पर, बहुत किसी रोग होने पर जो तीव्र वेदना के समय आत्मा के प्रदेश निकलते हैं बाहर, उसे वेदना समुद्घात कहते हैं, पर वो कठिन है थोड़ी सी, तैजस की लिखना हो तो तैजस की लिख लीजिएगा, आहारक की और केवली समुद्घात तीन, बाकी तो सरल है। इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री बच रहा हूँ, थोड़ा कठिन है वो, लिख लेंगे तब भी समझ में तो आएगा, थोड़ा तेजस समझा, जीवों के उपकार या विनाश करने में समर्थ, जीवों के उपकार या विनाश करने में समर्थ, तेजस शरीर की रचना के लिए जीवों के उपकार या विनाश करने में समर्थ, तेजस शरीर की रचना के लिए होने वाला आत्म प्रदेशों का फैलाव, अरे लिख रहे हैं बहुत क्यों लिख रहे
हैं,
जीवों के उपकार या विनाश करने में समर्थ, ये तो कितनी बार बोला मैंने, लिख लिया, तेजस शरीर की रचना के लिए होने वाला आत्म प्रदेशों का फैलाव तेजस समुद्घात कहलाता है, दो प्रकार का है, अशुभ तेजस, शुभ तेजस, अशुभ तेजस लिख लीजिएगा, किसी उग्र तपस्वी महामुनि को, किसी उग्र तपस्वी महामुनि को किसी कारणवश क्रोध आ जाने पर खतरनाक, किसी उग्र तपस्वी महामुनि को किसी कारणवश क्रोध आ जाने पर बाएं कंधे से सिंदूरी रंग का, बाएं कंधे से सिंदूरी रंग का 12 योजन विस्तार वाला बिल्ली के आकार का शरीर निकलकर, बिलाव बिल्ली के आकार का शरीर निकलकर सब ओर विनाश करके उसी मणि के शरीर में समा जाता है, 12 योजन विस्तार वाला बिल्ली के आकार का शरीर निकलकर सब ओर विनाश करके उसी मुनि के शरीर में समा जाता है, ज्यादा देर ठहरे तो मुनि को भी भस्म कर देता है, इसीलिए तो लिखवा दिया, इसका तो अपन ने पढ़ा है, मगर ये विशेष है, कोई जरूरी नहीं है कि रुके नष्टी करे उसको, इतनी देर मरण हो जाए तो क्या करेंगे, ज्यादा देर ठहरे तो मुनि को भी भस्म कर देता है, विचार ही है ये कि क्या ऐसा भी संभव है कि ना करे, क्यों लिखा है ऐसा कि ज्यादा देर ठहरे तो, ज्यादा देर तक मुनि के शरीर में ठहर जावे उसे विनाश कर देता उसका भी, इसका मतलब है कि पहले ही उसके शांत हो जाए अगर तो नहीं करे, शायद ज्यादा देर तक नहीं कह सकते हम, कैसे कह सकते हैं,
इस
अपेक्षा तो यही
है,
नुकसान तो उग्र तपस्वी लिखा है, सामान्य तपस्वी के लिए नहीं है, बहुत भारी तपस्या जिसने करी और उसे बर्दाश्त करने की शक्ति से बाहर हो गए, बर्दाश्त किया और उसके बाद बाहर हो गई शक्ति से, तब निकला है और वो जान रहे हैं, और ऐसा नहीं कि उनका गुणस्थान गिर जाए, गुणस्थान नहीं गिरेगा, छठा गुणस्थान
रहेगा,
छठा गुणस्थान नीचे नहीं गए, मिथ्यात्व नहीं आएंगे, अरे वाह, यही तो पढ़ने वालों की बुद्धि गैर बुद्धिमानी की, वो यही समझते हैं कि जी यहाँ सम्यक दर्शन था, जी यहाँ सम्यक दर्शन था, अकेले सम्यक दर्शन ऐसे थोड़ी छूट जाता है, पता था थोड़ी कि रखा हुआ गल गया। सम्यक दर्शन रहता है, उसके बिना तैजस समझघात नहीं होता। छठे गुण स्थान में जब तक पूरा नष्ट करके नहीं आ जाएगा तब तक छठे गुण स्थान को समझते क्या है आप? छठे गुण स्थान में दूसरे के घात करने का भाव आ सकता है संजुलन की तीव्रता में, और अनंतानंदी बैठी रहे और घानी में फेल दिया जाए तो उप नहीं करे। तो थोड़ा सा समझ लिया, अपन धारणा बना लेते हैं वैसी नहीं। मैं आपसे ये कह रहा था कि छठा गुण स्थान बना रहता है मतलब उनके परिणामों में कषाय इतनी अधिक नहीं आई है, अंतर मुहूर्त के लिए कषाय इतनी तेज हुई है अंतर मुहूर्त, लेकिन अंतर मुहूर्त के पहले ही शांत हो जाए तो केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, इतनी शक्ति उसके अंदर है, छोटी मोटी शक्ति नहीं है। अपन बहुत जल्दी थर्मामीटर लगा देते हैं कि नीचे गिर गए, नहीं इतने जल्दी नहीं गिरते हैं, समय दर्शन ऐसे थोड़ी छूट जाता है बहुत।
जब
को
बहुत तेज गुस्सा आता है उस समय ये निकलता है,
हर एक को नहीं, महातपस्वी लिखा
है महातपस्वी को जब मतलब काफी तेज गुस्सा आता है तब ये निकलता
है, सही हो जाता
है, सही हो जाता
है, लेकिन सबके लिए निकले कोई जरूरी नहीं,
जो उनकी नहीं है जिनको निकला फिर वो निकालने के बाद ये तो निश्चित है कि वो
12 तक कर देगा और वापिस आएगा,
वापिस आने तक यदि उनका गुस्सा शांत हो जाता है तब वो उनको भस्म नहीं करेगा,
ये नहीं
किया
बस इतना ही लिखवा दिया मैंने। अब आप समझते रहो, मुझे इतनी जिंदगी हो गई 15 साल, खूब डिस्कशन हुआ है बड़े बड़े पंडित जी लोगों से, और किसी के अकल में नहीं आता, तो नहीं आता तो कहीं मिलता नहीं लिखा, इतना ही मिलता है अपन अपने मन से कैसे कह सकते हैं कि नहीं होता नष्ट या कि हो जाता। तब इसलिए तो मैंने उसको उतना ही छोड़ दिया कि ज्यादा देर ठहरे तो मुनि को ही भस्म कर देता, इतना लिखा। अब इसके सब अर्थ निकालते हैं कि इसका मतलब है कि गुस्सा शांत हो गया, तो फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है कि गुस्सा शांत हो गया तो समुद्घात कैसे हो पाएगा? जब तक तीव्रता नहीं रहेगी तब तक अंतर्मुख तक वो काम कैसे करेगा, अंतर्मुख बाहर निकल करके? तो दोनों चीजें आती हैं। खैर इसमें अपन को नहीं पढ़ना है, अपन को ये देखना है कि कभी मुनि बने तो गुस्सा नहीं करे। नहीं तो ऐसा उपद्रव हो जाती, सारी तपस्या वस्या चौपट हो जाती मेरा। तब तो नहीं होता है, शुभ समुद्र सुख तैय श्रेष्ठ चारित्र वाले दया भाव से भरे हुए, श्रेष्ठ चारित्र वाले दया भाव से भरे हुए महातपस्वी मुनि के, श्रेष्ठ चारित्र वाले दया भाव से भरे हुए महातपस्वी मुनि के अत्यंत करुणावश, बहुत प्रगाढ़ होनी चाहिए, अत्यंत करुणावश दाहिने कंधे से, उसमें बाएं से नहीं, दाहिने कंधे से हंस के समान श्वेत रंग वाला शरीर निकलकर सब और सुख शांति उत्पन्न करता है। एग्जैक्टली वही शब्द क्या ठीक, महातपस्वी मुनि के अत्यंत करुणावश, अगर मेरे इसमें नहीं लिखा होता तो मैं रिपीट नहीं कर पाता, सफेद रंग वाला शरीर निकलकर सब और सुख शांति उत्पन्न कर देता है, किसी को बोलते हैं कौन सा बुद्ध है आहार स्थान में होगा कि मरण के समय ये गुण स्थान हो जाएगा, विग्रह गति में जाते समय जो है मरण तो छठे गुण स्थान में हो गया, जब मरण हुआ तो छठा गुण स्थान था, लेकिन चौथे गुण स्थान में तो आएगा, आना ही पड़ेगा। जब विग्रह गति में जाएगा तो छठे गुण स्थान थोड़ी रहेगा, संयम थोड़ी रहेगा, तो छूट जाएगा। लेकिन गुण स्थान में उसमें मरण नहीं होता, बस तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, सब में तीसरे गुण स्थान को छोड़कर सब गुण स्थान में मरण होता। लेकिन मरण के समय जब दूसरी किसी आयु में जाने लगता है विग्रह गति में, तब तो पहला, चौथा और